कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही मतलब उफनती हुई नदी है, लहरें एकदम प्रचंड है और पानी का बहाव बहुत डराने वाला है।
बिल्कुल, एक बहुत ही खौफनाक दृश्य।
हाँ, और उस नदी के बीचों बीच एक इंसान एक बहुत भारी पत्थर को अपने सीने से चिपकाए हुए है। उसे लगता है कि मतलब वो उस भारी पत्थर के वजन के सहारे बहने से बच जाएगा।
जबकि असल में वो पत्थर ही उसे गहराई में डुबो रहा होता है ना?
बिल्कुल सही। जैसे ही वो उस पत्थर को छोड़ने का साहस करता है तो नदी का बहाव उसे डुबोने के बजाय उसे अपने साथ बहाकर सुरक्षित किनारे तक ले जाता है।
ये एक बहुत ही गहरा रूपक है।
है ना? और ये जो भारी पत्थर है, ये असल में हमारा अहंकार है, हमारा ये भ्रम है कि हम सब कुछ मतलब नियंत्रित कर सकते हैं, और उस पत्थर को छोड़ने की हिम्मत ही असली समर्पण है।
सच कहूं तो इस पत्थर को चिपकाए रखने और फिर उसे छोड़ने का जो मनोविज्ञान है, वो मानव जीवन का सबसे गहरा द्वंद्व है।
बिल्कुल।
जब हम जीवन के बड़े संघर्षों से गुजरते हैं तो ये मान लेना कि मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा, ये अक्सर मतलब सबसे बड़ी मानसिक थकान का कारण बनता है।
हाँ, क्योंकि इंसान उस नियंत्रण को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि नियंत्रण छोड़ना मतलब हार मान लेना है।
बिल्कुल, और इसी नियंत्रण के भ्रम को तोड़ने के लिए आज हम इस विशेष गहन अन्वेषण में गहराई तक जा रहे हैं।
जी, और इस चर्चा का आधार कोई आधुनिक मनोवैज्ञानिक की किताब नहीं है, बल्कि भागवत कथा सप्ताह के तृतीय दिवस के वे वृतांत और नोट्स हैं जो सदियों पहले इस मानवीय मनोविज्ञान को डिकोड कर चुके हैं।
सही कहा आपने। इन स्रोत सामग्रियों का गहराई से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होती है कि ये केवल कुछ पौराणिक कहानियों का संकलन नहीं है,
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये मानव मन के सबसे जटिल बंधनों को खोलने का एक बहुत ही सुगम मार्ग है।
क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर इंसान मतलब किसी ना किसी बाहरी या भीतरी युद्ध में उलझा हुआ है, ये सूत्र बताते हैं कि कैसे बिना लड़े सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है।
भागवत कथा का ये तीसरा दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मनोविज्ञान और उच्च आध्यात्मिक चेतना का एक अद्भुत संगम है।
एक संगम।
हाँ, ये दिन उन अवस्थाओं का विश्लेषण करता है जहाँ इंसान की अपनी सारी क्षमताएं, सारी रणनीतियां विफल हो जाती हैं।
मतलब जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता।
बिल्कुल, यह स्थापित करता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के उस मैं के बोझ को पूरी तरह से त्याग कर एक विराट सत्ता की शरण में जाता है तो वो सत्ता स्वयं ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है।
तो इस मैं के बोझ और इसके भयानक परिणामों को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस स्थिति को देखना होगा जहां सत्ता का अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है।
आप हिरण्यकश्यप के प्रसंग की बात कर रही हैं ना?
हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री हमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के उस द्वंद्व की ओर ले जाती है जो मूल रूप से एक परम अहंकारी सत्ता और एक मासूम आस्था के बीच का सीधा टकराव है।
ये एक बहुत ही मूलभूत संघर्ष है।
देखिए, हिरण्यकश्यप कोई साधारण राजा नहीं था। अगर हम उसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो एक ऐसा टॉक्सिक अथॉरिटी फिगर है, मतलब एक ऐसा शासक जो हर चीज पर अपना निरंकुश नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि पूरी सृष्टि केवल उसे ही ईश्वर माने।
ये चरम अहंकार अक्सर एक बहुत गहरी असुरक्षा से जन्म लेता है।
असुरक्षा? वो कैसे?
देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास असीमित शक्ति आ जाती है तो उसे हर पल उस शक्ति के छिन जाने का भय सताता है। उसे अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करने के लिए निरंतर बाहरी मान्यता चाहिए होती है।
अच्छा, मतलब उससे दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होता है।
बिल्कुल, हिरण्यकश्यप ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि उसके पूरे साम्राज्य में कोई भी एक स्वतंत्र विचार या आस्था पनपे।
और जब वो आस्था उसके अपने ही महल में उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद के भीतर प्रकट होती है तो वो उसके अहंकार पर सीधा प्रहार बन जाती है।
जी,
और यहीं प्रहलाद का वो स्वरूप उभर कर आता है जो सच कहूं तो अचंभित कर देने वाला है।
बहुत ही ज्यादा, मतलब एक छोटा सा बालक जिसके पास ना कोई शारीरिक बल है, ना कोई सेना है और ना ही कोई हथियार,
उसके पास केवल एक मंत्र है, निरंतर नारायण नारायण का स्मरण।
हाँ, और हिरण्यकश्यप उस बालक की आस्था को तोड़ने के लिए क्रूरता की हर सीमा पार कर जाता है। उसे विष दिया जाता है, पागल हाथियों से कुचलवाने का प्रयास होता है, अग्नि में बैठाया जाता है।
लेकिन इतनी भयावह स्थितियों के बावजूद प्रहलाद की श्रद्धा अडिग रहती है।
यही तो मैं सोच रही थी कि ये समझना बहुत ही जटिल है कि एक बच्चा बिना किसी प्रतिरोध के इतने बड़े साम्राज्य के भयतंत्र को कैसे विफल कर सकता है। क्या सच्ची भक्ति का अर्थ ही निर्भय हो जाना है? यह भय मुक्ति ही इस कथा का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली सिद्धांत है। मनोविज्ञान के अनुसार भय हमेशा खोने से पैदा होता है।
जैसे अपनी जान खोने का डर।
हाँ, अपनी देह खोने का डर, अपनी पहचान खोने का डर या अपना पद खोने का डर। हिरण्यकश्यप का पूरा जीवन इसी खोने के डर से संचालित था।
लेकिन प्रहलाद के भीतर वो डर था ही नहीं।
बिल्कुल नहीं। प्रहलाद की चेतना शरीर के स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। जब चेतना यह स्वीकार कर लेती है कि वह देह नहीं बल्कि आत्मा है, तो बाहरी संसार का कोई भी अस्त्र उसे डरा नहीं सकता।
ओह, हृदय में ईश्वर का अविरल स्मरण बाहरी संसार के हर कोलाहल को शांत कर देता है।
और यही वो बिंदु है जहां ईश्वरीय कृपा का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है।
जब सारे सांसारिक नियम विफल होने लगते हैं, तब भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार के रूप में प्रकट होना पड़ता है।
एक ऐसा विराट और भयंकर स्वरूप जो ना पूरी तरह मानव है और ना पूरी तरह पशु।
हाँ, जो केवल उस मासूम की रक्षा के लिए समय और स्थान के सारे नियम तोड़कर प्रकट होता है। ये दर्शाता है कि जब निर्दोष आस्था पर प्रहार होता है, तो ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे बचाने उतर आता है।
नृसिंह अवतार की यह घटना प्रकृति के एक अटल नियम को उद्घाटित करती है।
वो नियम क्या है?
यही कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, उसका विनाश निश्चित है। ईश्वरीय सत्ता भक्त की पुकार के अनुसार कोई भी स्वरूप धारण कर सकती है।
अद्भुत। अब प्रहलाद की ये अडिग शांति हमें एक नए विचार की ओर ले जाती है। प्रहलाद के पास तो कोई भौतिक शक्ति थी नहीं, इसलिए शायद ईश्वर पर निर्भर होना उसकी एक स्वाभाविक स्थिति थी।
सही बात है।
लेकिन क्या होता है जब असीमित भौतिक शक्ति किसी के पास पहले से मौजूद हो? तब उस अजेय होने के भ्रम को टूटने में कितना समय लगता है?
श्रोत सामग्री इस जटिलता को गजेंद्र मोक्ष की कथा के माध्यम से बहुत ही गहराई से खोलती है।
हाँ, जहाँ हमारे सामने गजेंद्र है, जो एक विशाल काय और अत्यंत बलशाली हाथी है, अपने पूरे वनराज का स्वामी, जिसे अपने शारीरिक बल पर पूरा विश्वास है।
गजेंद्र की यह स्थिति आधुनिक जीवन का एक बहुत ही सटीक रूपक है।
वो कैसे?
देखिए, गजेंद्र अपनी मस्ती में अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में प्रवेश करता है। उसे लगता है कि वह धरती और जल दोनों पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस सरोवर के भीतर एक मगरमच्छ घात लगाए बैठा है।
और मगरमच्छ जल का जीव है, पानी के भीतर उसकी शक्ति अपार है।
बिल्कुल। जैसे ही वो गजेंद्र का पैर पकड़ता है, एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष शुरू हो जाता है। गजेंद्र उसे बाहर खींचने का प्रयास करता है और मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता है।
ओह, ये संघर्ष कोई कुछ पलों का नहीं था, ये बहुत लंबा चलता है और मुझे लगता है कि इससे आज के मनुष्य के जीवन से जोड़कर देखना बहुत सहज है।
हाँ, कैसे?
मनुष्य भी अक्सर अपने पैसे, अपनी पद प्रतिष्ठा को अपनी सबसे बड़ी ढाल मान लेता है। उसे लगता है कि इन भौतिक संपदाओं के बल पर वो जीवन के हर मगरमच्छ से, मतलब कोई अचानक आई गंभीर बीमारी हो या कोई बड़ा आर्थिक संकट, उससे लड़कर जीत जाएगा।
और जब संकट आता है तो मनुष्य अपनी सारी शक्ति, सारा रसूख झोंक देता है।
जी।
लेकिन जब कोई अचानक और गहरा संकट आता है तो सारी ताकत धरी रह जाती है।
और यही वो समय होता है जब वो अपनी ऊर्जा का सबसे अधिक क्षय कर रहा होता है। गजेंद्र भी यही कर रहा था।
वो लगातार लड़ रहा था।
हाँ, उसे उम्मीद थी कि उसका झुंड, उसके परिवार वाले उसे बचा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, झुंड वाले भी किनारे पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं और अंततः उसे छोड़कर चले जाते हैं।
ये बहुत दुखद है। मतलब भौतिक संबंध एक सीमा के बाद साथ छोड़ ही देते हैं।
ये एहसास बहुत पीड़ादायक होता है कि इस महासंकट में अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लड़ना छोड़ देना चाहिए? क्या हार मान लेना ही जीत का पहला कदम है? कथा ये दर्शाती है कि भगवान विष्णु उस समय तक नहीं आए जब तक गजेंद्र संघर्ष कर रहा था।
जब तक गजेंद्र लड़ता रहा, ईश्वर नहीं आए।
बिल्कुल। जैसे ही गजेंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई, उसे ये भान हो गया कि अब उसकी अपनी क्षमता शून्य है, तब उसने पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारा।
तो गजेंद्र का यह अंतिम कृत्य हार मानना नहीं था?
नहीं, ये यथार्थ को स्वीकार करना था। जब तक हमारे भीतर ये सूक्ष्म विचार रहता है कि मैं खुद स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ, तब तक हम ईश्वरीय सहायता के लिए जगह ही नहीं बनाते।
वो अहंकार एक दीवार बन जाता है।
बिल्कुल, गजेंद्र के थकने और टूटने तक ईश्वर ने प्रतीक्षा की, और जैसे ही वो मैं का भाव पूरी तरह से विसर्जित हुआ, भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए।
ओह, और सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र को मुक्त किया। इसका अर्थ ये है कि संकट का समाधान इंसान की अपनी शक्ति में नहीं, भगवान की कृपा से मिलता है।
अपनी विवशता को स्वीकार कर लेना और अहंकार को शून्य कर देना ही ईश्वरीय कृपा को आमंत्रित करने का एकमात्र मार्ग है।
गजेंद्र का यह संघर्ष तो एक व्यक्ति का आंतरिक युद्ध था, लेकिन जब यही मंथन एक व्यापक और ब्रह्मांडीय स्तर पर होता है, तब क्या होता है?
तब हम समुद्र मंथन की ओर मुड़ते हैं।
जी, श्रोत सामग्री हमें समुद्र मंथन के अत्यंत विशाल रूपक की ओर ले जाती है, जहां क्षीर सागर का मंथन करने के लिए देवता और असुर, जो जन्म जन्मांतर से विरोधी रहे हैं, एक साथ आते हैं।
ओ, मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र मंथन की ये प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि जब लक्ष्य अत्यंत विशाल हो तो विरोधी शक्तियों को भी सहयोग करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। उद्देश्य तो अमृत पाना है, दोनों पूरे संकल्प के साथ मंथन कर रहे हैं, फिर सबसे पहले लक्ष्मी जी या अमृत कलश क्यों नहीं निकला?
सबसे पहले हलाहल विष निकला।
हाँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जलाना शुरू कर दिया। जब भी हम कुछ बहुत अच्छा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी दबी हुई बुराइयां या विष ही सतह पर क्यों आता है?
यह समुद्र मंथन का सबसे मनोविज्ञानिक पक्ष है। यदि हम इस समुद्र को मनुष्य के अवचेतन मन का प्रतीक माने, तो जब कोई व्यक्ति आत्मसुधार का संकल्प लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है?
क्या होता है?
उसकी सारी दबी हुई कुंठाएं, उसका क्रोध जो मन की गहराइयों में था, वो उथल पुथल के कारण सतह पर आने लगता है। यही वह हलाहल विष है।
मतलब सफलता और अमृत हमेशा संघर्ष के बाद ही मिलते हैं।
बिल्कुल, किसी भी व्यवस्था को जब मथा जाता है, तो जो मलिनता सबसे नीचे होती है, वो सबसे पहले उठती है। उस विष को संभाले बिना कोई भी मंथन आगे नहीं बढ़ सकता।
और यही भगवान शिव का कल्याणकारी स्वरूप सामने आता है।
जी, उन्होंने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए।
भगवान शिव यहाँ त्याग और करुणा के प्रतीक है, जो ये सिखाते हैं कि विष को पचाने की क्षमता के बिना अमृत का कोई मोल नहीं।
सही कहा। सफलता के मार्ग में मिलने वाली आलोचनाओं और नकारात्मकता को बिना अपने भीतर उतारे कंठ तक सीमित रखकर सहन करना ही शिव तत्व है।
ओह, और इसी शिव तत्व के कारण मंथन आगे बढ़ा और लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु और अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ।
संघर्ष और धैर्य के बाद जो प्राप्त होता है, वो सचमुच अत्यंत दिव्य होता है।
अब देखिए, संघर्ष के बाद जब अमृत मिल जाता है, शक्तियां आ जाती हैं, तो एक नई चुनौती जन्म लेती है। बुराई से लड़ना सरल हो सकता है, लेकिन अच्छाई के अहंकार से लड़ना सबसे कठिन है।
आप वामन अवतार और राजा बलि की कथा की बात कर रही हैं।
हाँ,
हिरण्यकश्यप तो क्रूर था, लेकिन राजा बलि तो दुष्ट नहीं थे। वे अत्यंत दानी और न्यायप्रिय राजा थे।
बिल्कुल, उनके पास असीम शक्ति और संपदा थी।
और जब भगवान विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन भगवान के रूप में आए, तो बलि ने उनसे केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया। और फिर वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया।
जी, 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। 3रे पग के लिए स्थान न बचने पर राजा बलि को अपना सिर प्रस्तुत करना पड़ा। मैं सोच रही थी, राजा बलि तो दानी थे, फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया?
वाह, क्योंकि दान करने का अहंकार भी एक बुराई है।
क्या इसका मतलब यह है कि अच्छा होना भी अपराध है?
दान करना अपराध नहीं है, लेकिन इस कथा का मर्म उस सूक्ष्म अहंकार में छिपा है। जब किसी के पास असीम शक्ति आती है, तो उसे भ्रम होने लगता है कि मैं देने वाला हूँ।
ओहो, मतलब मैं दानी हूँ, ये विचार?
हाँ, ये विचार व्यक्ति को उस ईश्वरीय सत्ता से अलग कर देता है। बलि के भीतर ये सूक्ष्म अहंकार गहराई से बैठ गया था।
ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बुराई का अहंकार तो समाज पहचान लेता है, लेकिन परोपकार का अहंकार इतनी गहराई में छिपा होता है।
सत्य वचन। भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें इस सूक्ष्म अहंकार से मुक्त करके शुद्ध किया।
जब बनी ने अपना सिर झुकाया तब ईश्वर के सामने उनकी सारी शक्तियां छोटी पड़ गईं।
अपना मस्तक झुकाना ही सच्चा आत्मसमर्पण था। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। वामन कथा का मुख्य संदेश यही है कि विनम्रता अहंकार से महान होती है।
ये पूरी यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम आज की चर्चा का सारांश निकालें तो भागवत कथा के तीसरे दिन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
भक्ति भय से बड़ी है, जैसा प्रहलाद की कथा में देखा।
और संकट में ईश्वर स्मरण ही एकमात्र सहारा है, जैसे गजेंद्र मोक्ष में।
समुद्र मंथन से हमने सीखा कि संघर्ष के बाद ही अमृत मिलता है।
और वामन अवतार ने सिखाया कि विनम्रता ही सच्ची महानता है।
दोनों वक्ताओं के रूप में हम इस केंद्रीय विचार को दोहरा सकते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान की शरण में आता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।
बिल्कुल। और अब जब हम इस चर्चा के अंत पर हैं तो एक गहरा प्रश्न उठता है। आज के इस दौर में जहां हर कोई हिरण्यकश्यप या राजा बलि की तरह अधिक से अधिक शक्ति और पद हासिल करने की दौड़ में लगा है,
सब कुछ मुट्ठी में जकड़े रखना चाहते हैं।
हाँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी आजादी सब कुछ मुट्ठी में जकड़े रखने में नहीं, बल्कि अपना मस्तक झुकाकर सब कुछ एक बड़ी शक्ति के प्रति समर्पित कर देने में है?
ये निसंदेह विचार करने योग्य बात है। शायद अपना अहंकार हार जाना ही जीवन को जीतने की पहली शर्त है।
बिल्कुल। इसी शांत और भक्तिपूर्ण विचार के साथ हम आज के इस अन्वेषण को यहीं समाप्त करते हैं।